नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी। दोपहर एक बजे तक 40% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। ओडिशा विधानसभा की 42 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनावों की मतगणना कल। तेल विपणन कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 69.50 रूपये प्रति यूनिट की कटौती की। विमान ईंधन की कीमत में भी 6.5% की कटौती। और पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में स्वीकार किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर उसका आधिकारिक क्षेत्र नहीं बल्कि विदेशी क्षेत्र है। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में आज 7 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में पंजाब तथा उत्तर प्रदेश की 13-13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में कुल 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी, भाजपा के ही अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद तथा कंगना रनौत, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी तथा विक्रमादित्य सिंह, राष्ट्रीय जनता दल की मीसा भारती और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी शामिल हैं। आज ही ओडिशा विधानसभा की शेष 42 सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 6, बिहार उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की 1-1 विधानसभा सीट का उपचुनाव भी हो रहा है। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। लोकसभा चुनाव के इस चरण में दोपहर एक बजे तक 40% से अधिक मतदान रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 49%, झारखंड में लगभग 47%, पश्चिम बंगाल में 45% और चंडीगढ़ में 40% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में 39, पंजाब तथा ओडिशा में लगभग 38% और बिहार में लगभग 36% मतदान की खबर है। ओडिशा विधानसभा चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में लगभग 38% मतदान दर्ज किया गया है। और आइए अब चलते हैं हमारे संवाददाताओं के पास और जानते हैं मतदान की ताजा स्थिति। सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मौजूद हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र के पास। अनुपम, लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि इस चरण के चुनावी समर में कौन से प्रमुख उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और 13 सीटों पर किन किन सीटों पर कांटे की टक्कर है।
जी देवेंद्र, हम अभी गोरखपुर के गोरखनाथ कन्या प्राथमिक विद्यालय आदर्श मतदान केंद्र पर हैं। यहां मतदान सुचारू रूप से चल रहा है और तेज गर्मी के बावजूद लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह है। उत्तर प्रदेश में आज गोरखपुर समेत वाराणसी, मिर्जापुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और रॉबर्ट्सगंज में मतदान जारी है। इसके अलावा सोनभद्र जिले के दुधी विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव भी हो रहा है। इन क्षेत्रों में लगभग 2,50,56,000 से अधिक मतदाता है। देवेंद्र, अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के अजय राय का मुकाबला है। वहीं यहां गोरखपुर में 2 सिनेमा टीवी कलाकार भाजपा के रवि किशन और सपा के काजल निषाद और बसपा के जावेद सिमनानी के बीच मुकाबला है। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री और अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल, सपा के रमेश बिंद और बसपा के मनीष तिवारी के बीच टक्कर है। वहीं चंदौली में भाजपा उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, सपा के बीरेंद्र सिंह और बसपा से सत्येंद्र मौर्य के बीच मुकाबला है। देवेंद्र, चुनाव आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब तक 40% से अधिक मतदान हो चुका है।
जी अनुपम, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं पंजाब, जहां अमृतसर में मौजूद हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा सैकिया। सुपर्णा, पंजाब में एक ही चरण में सभी 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, ऐसे में मतदाताओं में उत्साह कैसा है और मतदान केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्था की गई है?
जी देवेंद्र जी, मैं अभी अमृतसर में नवजोत मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर मौजूद हूं। इस निर्वाचन क्षेत्र में एक बजे तक 32% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। तेज गर्मी के बावजूद लोग एक नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में अमृतसर में 56.34% मतदान हुआ था। इस बार चुनाव आयोग और प्रशासन की पूरी कोशिश है कि लोग लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अगर पूरे पंजाब की बात करें तो इस बार 5 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और 70% मतदान का आंकड़ा पार करने का लक्ष्य रखते हुए चुनाव अधिकारी ने हर संभव प्रयास करा है। मतदाताओं को गुलाब शरबत दिया जा रहा है जगह जगह पे, पिंक बूथ से लेकर यूथ बूथ और ग्रीन बूथ तक हर संभव प्रयास करा जा रहा है कि मतदाता आके अपना वोट दें। पिछले लोकसभा चुनाव में पंजाब में 65% मतदान हुआ था और यहाँ में 328 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं जिसमें से 5 लाख, जैसे कि मैंने बताया, 5 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। सुरक्षा निगरानी रखने के लिए 81,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं।
जी, धन्यवाद सुपर्णा इस तमाम जानकारी के लिए। और पंजाब के बाद अब हम रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां शिमला में मौजूद हैं हमारे संवाददाता दुर्गेश भदौरिया। दुर्गेश, पर्वतीय प्रदेश में आप किस मतदान केंद्र पर इस समय हैं और वहां पर मतदाताओं में विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है?
देवेंद्र, अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करूं तो एक अनोखी और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां चुनावों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक संख्या में भाग लेती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो पार्टियां ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को टिकट देने में थोड़ी संकोच करती रही हैं, लेकिन मतदान के मामले में ऐसा नहीं है और उन्होंने हमेशा से ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मैं यहाँ के प्राइमरी स्कूल के सामने उपस्थित हूँ और यहाँ मैंने देखा कि सुबह से ही महिलाएं काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और युवाओं की बात करें तो मैंने स्वयं देखा कि युवा लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ मतदान केंद्रों पर वोट डालने आ रहे हैं और जिन युवाओं से मैंने बात की उससे मुझे यह समझ में आया कि युवा राजनीतिक रूप से सक्रिय भी है और जागरूक भी। हिमाचल प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक लगभग 49% मतदान दर्ज किया गया था और अगर मैं केवल शिमला की बात करूं तो यह संख्या लगभग 50% है और मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन आंकड़ों में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा शामिल हैं। इसमें लगभग 28 लाख महिला मतदाता हैं जबकि 2019 के बाद से लगभग 4 लाख नए मतदाताओं की सूची में जोड़ा गया है, उनमें से अधिकांश युवा हैं। चुनाव आयोग ने भी अधिक महिलाओं और युवाओं को आकर्षित करने के लिए कई व्यवस्थाएं की हैं। आयोग ने महिला थीम के पिंक बूथ, युवा मतदाताओं के स्वागत के लिए आदर्श मतदान केंद्र भी स्थापित किए हैं, मतदान के प्रति अधिक आकर्षित करने के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने इससे पहले कई अभियान भी चलाए थे जिसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और युवाओं को मतदान केंद्र पर लाना था।
जी, धन्यवाद दुर्गेश इस जानकारी के लिए। और हिमाचल प्रदेश के बाद अब हम रुख करते हैं झारखंड का, जहां पर रांची में मौजूद हैं हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार लाल। तो कृष्ण कुमार लाल, मतदान समाप्त होने में अब लगभग 3 घंटे शेष हैं, अब तक मतदाताओं में कैसा उत्साह दिखा है और राज्य में आज जिन 3 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं वहां मुकाबला किन प्रमुख उम्मीदवारों के बीच आपको दिखाई दे रहा है?
देवेंद्र, आज जो है गोड्डा, दुमका और राजमहल
जी
3 संसदीय क्षेत्र में मतदान चल रहा है। पिछले चरणों के मुकाबले इस बार मतदाताओं के बीच विशेष उत्साह देखा जा रहा है। 1 बजे तक लगभग 47% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। इस बार खास बात ये देखी जा रही है कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता अधिक संख्या में वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकले हैं।
जी,
गर्मी के बावजूद महिलाओं की अभी भी लंबी लंबी कतार दिख रही है। और एक बात मैं इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि पहली बार जो युवा वोट डाल रहे हैं वो काफी रोमांचित दिख रहे हैं। देवेंद्र, इस बार इस चरण का मतदान एनडीए और एनडी गठबंधन दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है।
जी जी, धन्यवाद धन्यवाद कृष्ण कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। और हम आगे रुख करते हैं पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में मौजूद हमारे संवाददाता कल्याण लाहा का। कल्याण लाहा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोलकाता में भी इस समय मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है और इसके बारे में अपडेट हम आपको जल्द देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखनाथ बालिका प्राथमिक विद्यालय में वोट डाला। रवि किशन ने शहर के तारामंडल मतदान केंद्र में और काजल निषाद ने इंदिरा नगर में मतदान किया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला ने सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में वोट डाला। राज्यसभा सांसद डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी गोरखपुर में मतदान किया। पंजाब में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के उल्लंघन के लिए फिरोजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह कंबोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गुरु हर सहाय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जीवा अरई गांव में वोट डालते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए ये एफआईआर दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने के बाद सुरेंद्र कंबोज और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया है। और एक बार फिर से हमारा संपर्क बना है कोलकाता में मौजूद हमारे संवाददाता कल्याण लाहा से। कल्याण, पश्चिम बंगाल की राजनीति और चुनाव में इस बार कई मुद्दे महत्वपूर्ण रहे हैं। इस चरण में चुनावी लड़ाई किन प्रमुख उम्मीदवारों के बीच दिखाई दे रही है? कल्याण जी, हम दोबारा प्रयास करेंगे कल्याण से संपर्क करने का और आपको जानकारी देंगे। इस बीच ओडिशा में मतदान प्रक्रिया के दौरान हृदय गति रुकने के कारण एक बूथ लेवल अधिकारी की मृत्यु हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024 देश का पहला और सबसे विश्वसनीय प्रसारक आपके लिए ला रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी परिणामों पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम।
4 जून सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक मतगणना के पल पल की खबर।
जानिए कौन है आगे कौन पीछे,
हर सीट से सटीक जानकारी, कौन हारा और किसने बाजी मारी,
देश की करोड़ों जनता का क्या है निर्णय।
आकाशवाणी गोल्ड और अन्य आकाशवाणी चैनलों पर सुनिए लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव की मतगणना कल होगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना सवेरे 6 बजे शुरू होगी। विपक्षी दलों के नेताओं ने लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न होने के बाद आज शाम बैठक बुलाई है। तेल विपणन कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 69.50 रूपये की कटौती की घोषणा की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बताया कि दिल्ली में एक व्यावसायिक सिलेंडर का मूल्य 1676 रूपये होगा। ये सिलेंडर अब कोलकाता में 72 रूपये, मुंबई में 69.50 रूपये और चेन्नई में 70.50 रूपये सस्ते मिलेंगे। इसके अलावा विमान ईंधन की कीमतों में भी 6.5% की कमी की गई है। सरकार ने कहा है कि बिजली की अत्यधिक मांग के बावजूद ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का भंडार 45 मीट्रिक टन से अधिक बना हुआ है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक है। कोयला मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि ये स्टॉक 19 दिनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर विदेशी क्षेत्र है। पाकिस्तान के अपर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कश्मीरी शायर अहमद फरहद शाह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पुलिस हिरासत में हैं और उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तान के कब्जे वाली विदेशी भूमि है जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार और पद्मश्री मगुनी चरण कुंवर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि श्री कुंवर अपने पीछे समृद्ध और प्रेरक विरासत छोड़ गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में जारी भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को हार का सामना करना पड़ा। दुनिया की तीसरे नंबर की भारतीय जोड़ी को जापान की मत्स्यु यामा और चिचारू शिदा की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। त्रिशा और गायत्री की जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में दुनिया की 6ठे नंबर की किम यो योंग और कोंग ई योंग की कोरियाई जोड़ी को हराया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक 40% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। ओडिशा की विधानसभा की 42 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनावों की मतगणना कल। तेल विपणन कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 69.50 रूपये प्रति यूनिट की कटौती की। विमान ईंधन की कीमत में भी 6.5% की कमी। और पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्वीकार किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर उसका आधिकारिक क्षेत्र नहीं बल्कि विदेशी क्षेत्र। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।